जिस रास्ते से वो गुजरता था इंसान तो क्या उनकी छाप तक मिलनी बंद हो जाती थी। जहाँ जहाँ वो जाता था लोग वहाँ का इलाका खाली कर देते थे और उसकी पहुँच से दूर निकल जाते। इंसान के रूप में एक खूंखार जानवर था। पैसों के लिए वो लोगों को अपना निशाना बनाता था और उसका हथियार था रुमाल। हाँ जी, एक पीला रुमाल। वो रुमाल से अपने शिकारों को मौत के घाट उतारता था। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, बल्कि पूरे 931 लोगों को उसने मौत के घाट उतारा था। व्यापार, काफिला और पीला रुमाल, ये कहानी है ऐसे ठग की जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक सीरियल किलर माना गया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित चावला और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ तलाश इंडिया क्राइम्स के दूसरे एपिसोड में। आज की कहानी है बहराम ठग, जिसे बेरहम ठग भी बोला जाता था। वो भोले वाले व्यापारियों के काफिले को अपना निशाना बनाता था। बहराम ठग का दिल्ली से लेकर ग्वालियर और जबलपुर तक इस कदर खौफ था कि लोगों ने इस रास्ते पे चलना ही बंद कर दिया था। बहराम ठग को समझने के लिए हमें उसी युग में चलना पड़ेगा जिस युग में उसका खौफ सबसे ज्यादा हुआ करता था। यह समय था 1765 और 1840 के बीच का। 18वीं शताब्दी खत्म होने को थी और मुगल सल्तनत भी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पैर इंडिया में पूरी तरह जमा लिए थे और कानूनी व्यवस्था को इंडिया में ठीक करने की कोशिश में लगे हुए थे। और ये वो समय था जिस समय में दिल्ली से लेकर ग्वालियर और जबलपुर के बीच के पुलिस थाने जितने भी थे उनमें कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता था किसी की मिसिंग की रिपोर्ट ना आई हो। अंग्रेजी सरकार परेशान थी कि इतनी बड़ी तादाद में लोग कैसे गायब हो रहे हैं। कराची, लाहौर, मंदसौर, मारवाड़, काठियावाड़ के व्यापारी बहुत ही रहस्यमय तरीकों से अपने पूरे काफिले के साथ गायब हो जाते थे। लखनऊ की खूबसूरत तवायफ हो, डोली में बैठी ससुराल जाती नई नवेली दुल्हन या बंगाल से अलाहाबाद और बनारस की तीर्थ यात्राओं पर आने वाले दल, सब रास्ते में गायब हो रहे थे। छुट्टी से लौटने वाले ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों की टोली भी गायब हो रही थी। अंग्रेजों की पुलिस की फाइलें लोगों की मिसिंग की रिपोर्ट से बढ़ती जा रही थी और अंग्रेजी पुलिस चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। लोगों के गायब होने का और सिपाहियों के गायब होने का भी खौफ इतना बढ़ गया था कि अंग्रेजी सरकार को एक फरमान जारी करना पड़ा कि कोई भी सिपाही अकेला ट्रैवल नहीं करेगा, वो दो या तीन के झुंड या टोली में ही यात्रा करेगा। तीर्थयात्री हो या व्यापारी, वो अपने घर से निकलते तो थे और पूरी टोली के साथ रास्ते में गायब हो जाते। पुलिस को हैरानी सबसे ज़्यादा ये थी कि इनमें से किसी की भी लाश पुलिस के हाथ नहीं लगती थी। लाशें मिलती तो कोई सुराग मिलता और तहकीकात आगे हो पाती, पर ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा। 1809 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैप्टन विलियम स्लीमैन को खासतौर से इंग्लैंड से इंडिया बुलवाया कि वो इसकी तहकीकात कर सकें और इसके पीछे किसका हाथ है उसको पकड़ सकें। कुछ समय तहकीकात करने के बाद कैप्टन स्लीमैन को पता चल गया कि इन लोगों के गायब होने के पीछे किसका हाथ था। इसके पीछे एक ठगों के गिरोह का हाथ था जिसमें लगभग 200 लोग थे। इन ठगों का मुखिया था बहराम, जो जंगलों में घोड़ों पे घूमता रहता था और इनके निशानों पे होते थे व्यापारी, पैसे वाले सेठ और वैश्याएं, या किसी के पास भी धन दौलत हो वो इन ठगों का निशाना बन जाते थे। और ये सारे लूटपाट बहराम की लीडरशिप में ही होते थे। पूरे नॉर्थ इंडिया में कैप्टन स्लीमैन ने इनको पकड़ने की एक मुहिम छेड़ दी और ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक खास डिपार्टमेंट बनाया जिसका नाम था ठगी एंड डेकॉइटी डिपार्टमेंट, का इंचार्ज कैप्टन स्लीमैन को बना दिया। स्लीमैन ने इस डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर्स जबलपुर में बनाया क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि गिरोह सबसे ज़्यादा सक्रिय ग्वालियर और जबलपुर के इलाकों के आसपास ही है। ये जगह ऐसी थी जिससे देश के किसी भी कोने में जाना हो तो यहाँ से गुजरना ही पड़ता था। साथ ही साथ यहाँ की सड़कें घने जंगलों से होकर गुजरती थी, जिसका फायदा ठग बड़े आराम से उठाते थे। कैप्टन स्लीमन ने सबसे पहले अपना हेडक्वार्टर्स जबलपुर में बनाने के बाद दिल्ली से लेकर जबलपुर तक के रास्ते में सारे जंगलों का सफाया कर दिया। उसके बाद उन्होंने एक डिटेक्टिव्स का बहुत बड़ा जाल बिछाया और कहा जाता है कि भारत में इंटेलिजेंस ब्यूरो की नींव भी उसी टाइम रखी गई थी। डिटेक्टिव्स की मदद से स्लीमन ने पहले तो ठगों की एक खास भाषा को समझने की कोशिश की। इस विशेष भाषा को ठग रामोसी कहते थे। रामोसी एक संकेतिक भाषा थी जिसे ठग अपने शिकार को खत्म करने के वक्त यूज किया करते थे। 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद आखिर विलियम स्लीमन ने बहराम को गिरफ्तार कर ही लिया। उसके गिरफ्तार होने के बाद उत्तर भारत में हजारों लोगों के गायब होने का राज खुला, ऐसा राज जो सिर्फ उस बेरहम गिरोह को ही मालूम था। बहराम ठग ने गिरफ्तार होने के बाद ये बताया कि ये लोग व्यापारियों का भेस बनाकर उन जंगलों में घूमा करते थे और अंधेरे में कोई भी व्यापारियों का काफिला गुजर रहा होता था तो ये बहरूपिये उस काफिले में शामिल हो जाते थे। जब इन व्यापारियों को नींद आने लगती थी तो ये गीदड़ की आवाज़ निकालते थे। ये गीदड़ की आवाज़ इन ठगों के लिए एक संकेत होता था कि अब इस काफिले पे हमला किया जा सकता है। ये गीदड़ की आवाज़ का संकेत मिलते ही बहराम और दूसरे लोग पहले तो मुआयना करते कि सारे व्यापारी सो गए हैं। उसके बाद बहराम अपना खास रुमाल, पीले रंग का रुमाल बुलवाता, उसके बाद अपनी जेब से एक सिक्का निकालता, सिक्के को उस रुमाल में डाल के एक गांठ बनाता और एक एक करके उस पीले रुमाल से सारे व्यापारियों का गला घोट देता। काफिले के सारे लोगों को मार देने के बाद बहराम ठग अपने साथियों के साथ जश्न मनाता था, लेकिन जश्न मनाने के पहले ठग मरे हुए सारे लोगों की हड्डियां तोड़ देते। उसके बाद लाशों के टुकड़े करके वहीं आसपास किसी गड्ढे में दफना दिया जाता था। दरअसल बहराम ठग जिन लोगों को मारता था उनकी कब्र वहीं बना देता था। अगर वहां कब्र बनाना पॉसिबल ना हो तो उन लाश के टुकड़ों को आसपास किसी कुएं में डाल देता था या नदी में फेंक देता था। यही एक वजह थी जिस वजह से पुलिस को कभी कोई लाश मिली नहीं और ना ही इन ठगों का कोई सुराग मिल पाता। जब बहराम और उसके लोग इन लाशों को ठिकाने लगा रहे होते हैं उस वक्त उनके 2 आदमी आसपास नजर रखे हुए होते हैं। उनके हाथ में होता है सफेद रुमाल। सफेद रुमाल हिलाते रहते जब तक कोई खतरा नहीं होता। जैसे ही खतरा दिखता वो रुमाल को नीचे करते, तब ये गिरोह वाले चौकन्ना हो जाते थे। कब्र बना देने के बाद लाशों को उन कब्रों में डालते थे। वहीं पे नाच गाने का प्रोग्राम होता था, कव्वाली होती थी और कव्वाली के बाद जब वो थक जाते थे तो वहीं कब्र पे बैठकर गुड़ खाते थे। ये भी कहा जाता था कि उस टाइम वहां से गुजरने वाला कोई भी आदमी अगर वो गुड़ खा लेता तो वो भी उस गिरोह का हिस्सा बन जाता था। स्लीमन ने एक ठग से पूछा कि ये गुड़ खिलाने के पीछे क्या खास बात है, तो उस पर उस ठग ने बोला कोई भी व्यक्ति अगर उस कब्र पर बैठ के वो गुड़ खा ले तो उसकी दुनिया ही अलग हो जाती है और वो एक सच्चा ठग बन जाता। बहराम ने गिरफ्तारी के बाद ये कबूल किया, ये माना कि उसने उस रुमाल से 931 लोगों की जाने ली है। बहराम ठग की गिरफ्तारी के बाद उसके गिरोह के दूसरे सदस्य भी गिरफ्तार हो गए। बहराम के साथ जो दूसरे खास ठग थे जो बहराम के साथ काम किया करते थे उनको सबको जबलपुर के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई और जबलपुर में ये पेड़ आज भी है। बहराम के गिरोह के जितने नए सदस्य थे उनके लिए कैप्टन स्लीमन ने एक सुधार घर बनवा दिया और कहा जाता है कि इस सुधार गृह के रिमेन्स अभी भी जबलपुर में है और इसके आसपास एक हफ्ते में एक दिन एक बाजार लगता है। इस बाजार में दुकानों के जो ओनर्स हैं इन ठगों की औलादें हैं। और कहा तो ये भी जाता है कि स्लीमन का परपोता जो इंग्लैंड में रहता है उसने अपने ड्राइंग रूम में वो पीला रुमाल और सिक्का सजा के रखा है जिससे बहराम लोगों को मौत के घाट उतारा करता था, जिसके चलते हिस्ट्री का सबसे बड़ा सीरियल किलर माना जाता है। तो दोस्तों ये थी कहानी बहराम ठग की, अब तक का सबसे खतरनाक सीरियल किलर जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है। आप लोग प्लीज़ बताइएगा आपको ये एपिसोड कैसा लगा, कोई सजेशंस, कोई फीडबैक हो तो प्लीज़ बताइएगा। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया तलाश इंडिया क्राइम्स पॉडकास्ट का सेकंड एपिसोड सुनने के लिए। नमस्कार।